نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى شروع کرتے ہیں آج کا لیسن سورۃ الفاتحہ، اور آج ہم ان شاء اللہ تعالی آیت نمبر 4 سے 7 تک کریں گے. تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جسٹ کو، نچوڑ کو سورہ فاتحہ کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی بات کا. اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے ہمیں سورہ کا. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. جب اتنی بڑی ڈکلیریشن آ گئی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا چیز ہے جس کا ہم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں، پچھلی 3 آیات میں ہم نے کیا بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کی تعریف کی، اور یہ ڈکلیئر کیا کہ وہی مالک ہے یوم الدین کا. جب ہم نے یہ 3 باتیں کر دی، 3 آیات میں، اصل میں 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس وجہ سے وہ تعریف کے قابل ذات ہے. جب ہم نے یہ صفات بیان کی، اس کے بعد اب ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ ہم یہ بات کا اعتراف کریں اور کچھ کہیں اب اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں، اب ایک تعریف کر کے پھر بیٹھ جانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. اب آپ نے تعریف کر لی، کیوں تعریف؟ کیونکہ اللہ وہ تو رب العالمین ہے، اللہ وہ تو رحمان ہے، اللہ وہ تو رحیم ہے، اللہ وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے. تو اس اللہ کی میں تعریف بیان کرتی ہوں، اس کے بعد کیا؟ بس نہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا ایکشن لیتے ہیں. اس کے بعد خود بخود انسان پھر کہتا ہے، ایسا رب جو ہے پھر میں عبادت اس کی کرتا ہوں. یہ راز ہے سورہ فاتحہ کا، اس لیے اس کو غور سے سمجھیے گا. میں اس اکیلے رب کی، جب ہم نے کہہ دیا نا ایاک، تو پھر ہم نے کہہ دیا اس اکیلے رب کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اس کے اندر بڑی ایک زبردست حکمت ہے جو اس کی فارمیشن میں ہے. یعنی یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا ایاک، اس کے اندر جو ویسے یہ ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، صرف یہ پورا جملہ ہو جاتا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن کا کو پہلے لایا گیا اور ساتھ ایا آ گیا. یوزلی ایسا جملہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایسے اس کو چینج کیا گیا، اس کی فارمیشن کو، اس کے سٹرکچر کو بدلا گیا، تو اس میں بڑی حکمتیں. نابودو کا کہنے میں کیا تھا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن جب ہم کہتے ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن جب ہم نے کہا ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو اب اس میں یہ آ گیا کہ اور کسی کی بھی نہیں کرتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ. سمجھ آئی؟ دوسری حکمت اس میں کیا ہے؟ کا کو پہلے لایا گیا. کا کون ہے؟ تیری کون ہے؟ اللہ تعالی. تو انسان اپنی عبادت کو پہلے اہمیت نہ دے کہ میں عبادت، اگر ہوتا نعبد ہم عبادت کرتے تو ہم پہلے آتا، پھر اپنی عبادت کی بات آتی، پھر تیری آتی. لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ تیری بات پہلے، میں بعد میں، میری عبادت کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تیری ذات پہلے، تو ایاک پھر اس کے بعد نعبد. ٹھیک، بات ہو گئی، سمجھ آ گئی ہے. اچھا، پھر دوسرا، تو میں نے ابھی آپ تک آپ کو 2 باتیں بتائیں. ایک آپ کو پہلے کیا بتائی، یہ حصر آ گیا اس میں، یعنی صرف تیری کا معنی آ گیا. सिर्फ तेरी का, और दूसरा क्या, अल्लाह ताला की जात को पहले रखा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात इसमें देखिए, यहां पे या का कह के हमने क्या कहा, नाबुदु हम इबादत करते हैं, जमा का सीगा आ गया, यानी ए अल्लाह तेरी सारी मखलूक तेरी इबादत करती, हम सब तेरी इबादत करते हैं, मुसलमान और जितने भी यानी मखलूकात हैं तेरी, हम सब तेरे गुलाम हैं। चलो काफिर अगर नहीं भी ये डिक्लेयर करता, लेकिन जो भी मुसलमान है वो सब एक जुबान है, अल्लाह हम तेरी इबादत करने में सब इकट्ठे हैं, अल्लाह हम सब तेरी इबादत करते हैं। इसमें एक रिश्ता भी आ गया कि दूसरे मुसलमानों के साथ जो हमारा रिश्ता है भाईचारे का, हम एक उम्मत है और अल्लाह हम सब तेरी इबादत में लगे हैं। दूसरी इसमें क्या बात है कि अल्लाह तू तो अकेला है, तू अकेला है, और इधर इबादत करने वाले अकेले नहीं, कोई एक नहीं है, आबुदू नहीं है, ना आबुदू हम सब हैं, हम सब तेरी इबादत करने में लगे हैं। देखें अब यहां से भी ये पता चल गया कि एक तौहीद की बात आ गई कि अल्लाह तू तो वाहिद है, तू तो अहद है, तू तो यकता है, और इबादत करने वाले तेरे बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं। समझ आई? अब आते हैं इबादत की तरफ, इस लफ्ज की तरफ, क्या चीज होती है इबादत जिसका इतना बड़ा हम दावा कर रहे हैं। इबादत नाम है गुलामी का। इबादत लफ्ज अब्द से बना है, और अब्द में क्या होता है, गुलामी का माना आता है, और जो गुलाम होता है वो कितनी देर का गुलाम होता है बताइए, 9 to 5 जॉब करता है, या 24 आवर का गुलाम होता है? गुलाम तो खरीदा हुआ होता है ना, वो तो उसकी जॉब कब तक होती है, हमेशा, रात है या दिन है, सुबह है शाम है, हालात कैसे भी हैं, आब्द जो है, गुलाम जो है, वो अपनी मर्जी नहीं करता, वो अपने आका की मर्जी पर चलता है। तो इस लफ्ज में गुलामी का माना है, और इस लफ्ज में गुलामी से ही आप देख सकते हैं हकीकी इबादत जो है ना, दरअसल उलमा कहते हैं अल्लाह ताला के आगे इजहार जिल्लत का नाम है। गुलामी में भी तो जिल्लत ही होती है ना, इज्जो इनकसारी तजल्लुल, कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है। इबादत के माने में एडवांस के स्टूडेंट लिख लें, गायतुल हुब्बी माअज़्ज़ुल। इबादत के माने में दूसरी चीज जो आती है गायतुल हुब, मोहब्बत की इंतहा, माअज़्ज़ुल तज़ल्लुल के साथ, यानी अपनी इज्जो इनकिसारी, अपनी जिल्लत और अल्लाह ताला से बे इंतहा मोहब्बत। देखें जो गुलाम होता है ना, आम दुनिया का कायदा जो है कि गुलाम जो होता है वो मोहब्बत कभी नहीं करता अपने आका से। उसकी क्या कोशिश होती है, उसकी कोशिश यही होती है कि कब मेरी ये गुलामी खत्म हो, मैं आजाद हूं, मैं कहीं जाऊं, मैं निकलूं, इस तौक को गले से उतारूं गुलामी का जो है। लेकिन जो अल्लाह का गुलाम होता है इबादत में और गुलामी में, यही तो फर्क है, वरना हम इबादत जो लिखते हैं, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, उसको लिखते हैं पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो हम क्यों नहीं लिखते हैं अल्लाह हम तेरी गुलामी करते हैं, क्योंकि गुलामी सिर्फ अकेला लफ्ज इसको बता नहीं सकता, क्योंकि इबादत में सिर्फ गुलामी का माना नहीं है। अगर सिर्फ गुलामी का हो तो फिर तो हम भाग जाना चाहें इससे, लेकिन इबादत में क्या है, इंतहा दर्जे की मोहब्बत है। यानी जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु तो हम दरअसल क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती। देखिए मैंने आपको दो माने बताए ना, दो चीजें बताई, मोहब्बत की इंतहा तजल्लुल के साथ, आजी ताजीम, तो मैं तुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती हूं, और साथ आजी ताजीम, तेरे आगे झुकी मैं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है, ये माना है इसके अंदर। बाज़ उलमा ने कहा कि मोहब्बत और खौफ का माना भी इसके अंदर है, यानी अक्सर आप देखें जिससे आपको मोहब्बत होती है उसे खौफ नहीं होता, जिनसे खौफ होता है तो उनसे फिर मोहब्बत नहीं होती, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं जब उसकी इबादत इंसान करता है, कि अल्लाह से मोहब्बत भी बेइंतहा और उसका खौफ भी कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वो इतनी बड़ी हस्ती है मैं कुछ नहीं उसके आगे। माना सेम ही है, खौफ कह लें, तजल्लुल कह लें, अपनी जिल्लत, अपनी आजजी कह लें, इनके सारी कह लें, यानी इंसान जब ये समझ जाता है ना कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है, तू ही है अल्लाह जो सब कुछ है, तू ही है बड़ा, तू ही है अजीम और मैं हकीर हूं, ये है इबादत का माना। कभी आपने ये सोच के या का नाबुदू कहा है और कभी ये सोच के इबादत की है? अक्सर लोगों को तो अल्लाह से मोहब्बत का कुछ पता ही नहीं होता, बस वो अल्लाह को क्यों मानते हैं, क्योंकि एक मुसलमान घर में पैदा हो गए बस, और पता है कि एक अल्लाह है, जब हमने कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो फिर उससे दुआ करनी होती है, बस इतना हद तक पता है। इससे आगे मोहब्बत का जो एक ताल्लुक होता है ना, वो बना ही नहीं है अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि अल्लाह को क्या समझते हैं, बस एक हमारी जरूरत पूरी करने वाला। जैसे कि हम कोई, जब हम बैठे हैं इंटरनेट पे तो हम शॉपिंग करते हैं, तो कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो ऑर्डर हमारे घर आ जाता है, तो हमने ऑर्डर कर दिया अमेज़न पे जाके कहीं जाके, तो इसी तरह हमने अल्लाह को ऑर्डर दे दिए नाउज बिल्ला, और अब वो बस हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना ताल्लुक है अल्लाह के साथ। हालांकि इबादत के माने में ही मोहब्बत है, कभी मोहब्बत करके देखिए अल्लाह से, क्या उसके साथ भी मोहब्बत होती है? हाँ, हमने मोहब्बतें की हैं तो बच्चों से की हैं, घरों से की हैं, माँ बाप से की हैं, पैसे से की हैं, चीजों से की हैं, कभी अल्लाह से मोहब्बत करके देखिए कि वो भी उसमें क्या लज्जत होती है। ये मोहब्बत जो इसका मजा पा ले तो दुनिया की हर मोहब्बत फिर पीछे रह जाती। देखिए जब इबादत के अंदर आप ये चीज समझ जाएंगे ना, इंतहा दर्जे की मोहब्बत, एक्सट्रीम मोहब्बत, तो मुझे आप सिर्फ ये बात बताएंगे मोहब्बत क्या क्या करवाती है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं, मोहब्बत क्या क्या करवाती है फिर। हाँ, मोहब्बत फिर वो होती है कि फिर आतिशे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए ना, तो वो मोहब्बत की इंतहा थी, फिर इंसान आग में भी कूद जाता है बेखतर, फिर इंसान क्या कुछ नहीं करता, ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान रातों को जाग भी लेता है किसी के लिए, ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान भूखा भी रह लेता है किसी के लिए, ये मोहब्बत भी होती है कि इंसान अपने ऊपर मुश्किल उठा के बस चाहता है कि दूसरे को नहीं कोई मेरी वजह से परेशानी हो, ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान को कहता है कि दूसरा कभी नाराज ना हो जाए, सारा राज ही इस मोहब्बत में है, और इबादत के अंदर है ही इंतहा दर्जे की मोहब्बत। हम इबादत 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 रट लेते हैं ये लफ्ज, लेकिन हमें नहीं पता कि मोहब्बत क्या है, हम नहीं जानते इबादत की रूह क्या है। हमने नमाजें भी पढ़ ली, हमने रमजान के रोजे भी रख लिए, हम हज उमरे को भी चले जाते हैं, इबादत हो रही है जी, इबादत हो रही है, तो भाई इबादत की रूह क्या है ये भी कभी जानना, इसके पीछे कोई मोहब्बत है वो भी कभी जानना, हाँ बस करना है ना, वो हज सब करते हैं, फर्ज है ना इसलिए कर लिया, हाँ नमाज भी पढ़नी है ना, माँ बाप ने डंडे से पढ़ा दी, अब बस एक आदत डाल दी है तो अब पढ़नी है, हाँ रोजे सभी रखते हैं तो रख लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं। इबादत की रूह को तो समझो, लोगों जो नमाज पढ़ते हो दिन में कितनी दफा ये दोहराते हो, या कनाबुद या कनस्तान, फिर भी समझ ना पाए कि इबादत क्या है, फिर भी समझ ना पाए कि इसमें मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत उसी से होती है जिसको इंसान जानता है, जिसको जानते ही नहीं उससे कहाँ मोहब्बत होती है। हाँ होगा कोई, आप वो कह दें कोई फलानी जगह एक रहता है बंदा, आप वो कह उसे कि बताने से मोहब्बत हो जाएगी, जब तक आपको ये ना बताया जाए वो कैसा है, वो आपके बारे में कितना केयरिंग है, वो आपका कितना पूछता है, तब मोहब्बत होती है। जब उसको जानते हैं, जब अल्लाह को जाना ही नहीं सारी जिंदगी, तो मोहब्बत भी कैसे पैदा होगी? हमारा भी कसूर नहीं, आपका भी कसूर नहीं, जाहिर है ना। कभी किसी ने सिखाया, ना ये पढ़ाया, ना किसी स्कूल, ना किसी कॉलेज, किसी जगह पे ये नहीं सिखाया जाता मोहब्बत अल्लाह से भी करनी है। और वो मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? जिसने अल्लाह को पहचान लिया ना, जान लिया, वो उसको कहने की नहीं जरूरत होगी कि मैं कहूँ आज से आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है। नहीं, फिर वो मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। फिर इंसान कहता है कैसे ना ऐसी जात से मोहब्बत करूं, इससे ज्यादा तो मोहब्बत करने के काबिल कोई है ही नहीं, कैसे ना करूं उससे मोहब्बत। फिर इंसान ये पूछता है कैसे ना करूं मोहब्बत, फिर ये नहीं कहता अच्छा मोहब्बत करनी है, अच्छा इबादत का मतलब ये होता है। फिर जब उसको समझ लेता है तो फिर अपनी जात कुछ नहीं लगती, फिर अपनी हस्ती कुछ नहीं लगती, फिर जिल्लत आती है कि मैं कितना जलील हूं, मैं कितनी गिरी हुई हूं, मैं कितनी हकीर हूं, मैं नाचीज हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब उसको पहचानते हैं फिर खुद ब खुद समझ आ जाती है अपनी जात की भी, ये मेरी क्या हैसियत है। फिर बनती है इबादत। ये इबादत नहीं है जो हम मुंह से या कनाबुदू क्या कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? हम तो अल्लाह से एक अहद कर रहे हैं जब हम इया का नाबुदू कहते हैं ना। नाबुदू क्या है? अब वो मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही, लेकिन जस्ट एक आपको इसकी ब्यूटी बताने के लिए। आपको पता है कि अरबिक के अंदर दो ही टेंसेस होते हैं। देखिए उर्दू में, इंग्लिश में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल। अरबिक में या तो माजी होता है या एक सीगा है जिसको गुजारे कहते हैं, उसको वो उसी के अंदर प्रेजेंट भी है, उसी में फ्यूचर भी है, उसी में हाल का माना भी है और मुस्तकबिल का भी। जब हम कहते हैं ना नाबुदू, तो ये मुजारे है। मुजारे मींस हम इस वक्त भी तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरी इबादत करते रहेंगे, अहद कर लिया अल्लाह के साथ हम करते ही रहेंगे। तो आप तो ये मान रहे हैं कि हमेशा हमेशा अल्लाह जब तक मेरी हस्ती है हम सब तेरी इबादत करते रहेंगे। क्यों? तू इस लायक है कि तेरी इबादत की जाए, तेरे अंदर ये खूबियां हैं, तेरी ये सिफात है जो अभी मैंने बयान की। अल्लाह फिर और कौन इबादत के लायक हो सकता है? कोई है ही नहीं इस कायनात में हस्ती जिसकी इबादत की जा सके। तो हम सब अब तेरी इबादत करें, जैसे एक तराना पढ़ रहे हैं, सब एक आवाज होके एक ही बात कह रहे हैं, हम सब तेरी इबादत कर रहे हैं। जो अल्लाह की इबादत करने वाला है ना, वो इस दुनिया में कभी अकेला नहीं होता। चाहे एक मोहिद दुनिया में रह जाए, एक तौहीद वाला दुनिया में रह दे, वो भी अकेला नहीं है। वो कभी अपने आप को अकेला क्यों समझेगा, क्यों अपने आप को ये सोचे कि मैं अकेला नहीं हूं? इसलिए कि पूरी कायनात है उसके साथ, सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जब आलमीन में हमने ये पढ़ लिया कि आलमीन में कौन कौन है, हर कोई है आलमीन में सिवाय अल्लाह की जात के। वो सभी हैं अल्लाह की इबादत करने वाले, वो सभी अल्लाह के आगे झुके हैं। अब खुद बताइए कि इसके बाद कोई तौहीद वाला कभी अकेला हो सकता है? कोई मोमिन कभी अकेला हो सकता है? हम कहते हैं हम अकेले इस मुल्क में, देखिए हमारे लिए कितने मुश्किल है, हम अकेले नहीं है, पूरी कायनात हमारे साथ है, क्योंकि पूरी कायनात उस अल्लाह की इबादत करती है। अब समझ आई इबादत क्या चीज? हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम एक वादा अल्लाह से करें, हम करेंगे तेरी इबादत। तो आपने तो एक अहद कर लिया, आपने तो अल्लाह ताला को ये मान लिया कि अल्लाह तेरी इबादत आज भी है और कल भी है और आने वाले दिनों में भी है और जब तक मेरी हस्ती है तब तक है। कितनी खूबसूरत बात है, पता है इसकी डेप्थ में जाए तो कितनी, अगर दिल से इंसान कहे समझ के, कितनी बड़ी बात कहती उसने। ये गुलामी अब तेरी होगी अल्लाह, ना बरादरियों की गुलामियां, ना पीरों मुर्शिदों की गुलामियां, ना लोगों की गुलामी, ना मेरे खानदान की गुलामी, ना बच्चों की गुलामी, किसकी गुलामी होगी सिर्फ तेरी। तो सबको तो आपने पीछे छोड़ दिया, फिर क्यों कहते हैं ये सारा दिन ये बोल बोल के इधर सलाम फेरा। हाय क्या करूं, हस्बैंड नहीं मानते। हाय क्या करूं, बच्चे नहीं मानते। आपने तो अभी ये इकरार किया अल्लाह गुलामी होगी तो सिर्फ तेरी। याद रखिए इबादत के अंदर माना है इताअत का, इताअत का माना इसके अंदर है। यानी आप इससे इसकी दलील, आप कहेंगे कि दलील लेकर आए कहां से, जब कुरान में आयत उतरी कि ये जो ईसाई हैं ये अपने उलमा की इबादत करते थे, तो आदि बिन हातिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाते हम तो नहीं अपने अहबार रोहबान और इनकी इबादत अपने उलमा की किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या जो वो चीजें हलाल करते थे तुम उनको हलाल नहीं कहते थे, जो वो हराम करते थे तुम उनको हराम नहीं कहते थे। कहते हाँ ऐसे ही कहते थे। तो आपने फरमाया यही तो इबादत है उनकी, यानी उनकी इताअत करना। जिस चीज को वो स्याह कह दें आपने कहना ये स्याह, जिसको कह दें सफेद आपने कहना ये सफेद है। अगर लोग कह रहे हैं कि आज से ये ड्रेस पहनना शुरू कर दो जिसमें टखने नंगे हैं, तो आपने कह दिया कि हाँ ठीक है यही अब हलाल है, यही अब सही है, यही अब हक है। अगर लोग कह रहे हैं कि आज से स्लीवलेस पहना करेंगे यही फैशन है, तो आप कहते हैं यही हक है, यही सही है, यही जायज है। तो इबादत किसकी की गई, फैशन की या लोगों की? यही इबादत है ना, जो किसी ने कह दिया वैसे ही चलने लगे। अगर लोगों ने कह दिया कि आजकल तो ये अच्छा नहीं समझा जाता हिजाब लेना, तो आपने भी यही सोच लिया, आपने भी कहा हाँ वाकई ये आज का दौर तो इस तरह का है ही नहीं कि इसके अंदर ऐसा किया जाए, तो आपने किसकी इबादत की? अगर लोग कह रहे हैं कि सूद तो जायज है, सूद के बगैर तो आजकल कमाई नहीं हो सकती, तो आपने उसी चीज को जायज समझ लिया। तो इबादत किसकी की? जिसकी इंसान इताअत करता है अल्लाह के सिवा, तो वो ही उसका माबूद बन जाता। ठीक है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है, फरमाया हलाक हो गया अब्दुल दिरहम, हलाक हो गया अब्दुल दीनार, दिरहम का बंदा दीनार का बंदा। आज डॉलर के बंदे भी तो है ना, वो डॉलर के गुलाम है, वो उसके अब्द है। अब्दुल दिरहम अब्दुल दीनार कहा, तो अब्द क्या होता है? तुमने अभी आपको बताया ना अब्द से ही तो इबादत है। तो जब अब्दुल दिरहम अब्दुल दीनार आपने कह दिया, तो यानी उसके बंदे बन गए, उनकी इबादत उसके लिए है। वो जो पैसा जहां से भी आएगा, हलाल से आए हराम से आए, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बस उसकी पूजा करते हैं, उनको बस पैसा चाहिए। तो इंसान सिर्फ अब्दुल्ला नहीं होता, वो अब्दुल दिरहम भी बन जाता है, अब्दुल दीनार भी बन जाता है, और अब्दुल डॉलर भी बन जाता है। ठीक है, तो पता भी नहीं चलता उसको कि जब वो बदल लेता है अपना क़िबला और किसका जाके गुलाम बन गया। आज कोई वालदैन के गुलाम है, वालदैन कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह की नाफरमानी के कोई काम को कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं, कोई शोहर के गुलाम बनी हुई औरतें, कोई बच्चों के गुलाम बने। आज तो हमने बहुत सारी गुलामियां ले ली, गले में ये तौक डाले ने गुलामी के, उनके हाँ और ना के बगैर हम नहीं कुछ करते। वो जायज कहें ना जायज कहें जो भी कहेंगे बस वो ही माननी। अब हम कहेंगे ये तो अल्लाह का हुक्म ही है वालदैन की मानना, अल्लाह का हुक्म ही है शोहर की मानना। अल्लाह का हुक्म उन चीजों में उनकी मानने का है जिन चीजों में वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कह रहे हैं। अगर वो कोई हराम काम करने को कहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने को कहते हैं, कोई गुनाह का काम करने को कहते हैं, तब थोड़ी उनकी मान लेनी, क्योंकि उनकी भी हम क्यों मानते हैं? उनकी उसी सूरत में मानते हैं कि जब वो अल्लाह की फरमाबरदारी की बातों में से कोई बात कह रहे हैं। उनकी तभी मानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि इनकी मानो, तो इसलिए हम मान रहे हैं। लेकिन असल हम किसकी मान रहे हैं? अल्लाह की बात, क्योंकि अल्लाह तूने कहा ना इनकी मानो, तो तब मैं मान रही हूं। तो इबादत बहुत गहरा लफ्ज है, बहुत ज्यादा गहराई है इसके अंदर, ये छोटी बात नहीं है इब्ने तैमिया कहते हैं इबादत इतना जामे लफ्ज है, इबादत नाम है हर उस कौल का और हर उस अमल का जो अल्लाह को पसंद हो, चाहे वो जाहिरी हो चाहे वो बातिनी हो। जाहिरी में क्या है? जाहिरी में मसलन है आपकी नमाज है, रोजा है, आपकी ये सब चीज, और बातिनी अमाल अकीदा, मोहब्बत, अदावत, दुश्मनी, इखलास, तवक्कुल, ये सब, यानी जाहिर में हो या बातिन में हो, जो भी अमल अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को पसंद करने वाला, वो इबादत है। और हम अल्लाह की नाफरमानियां करके सोचते हैं हम इबादत कर रहे हैं, इबादत तो, और कितनी बड़ी झूठ की बात हम बोलते हैं जब हम औरों की इबादत कर रहे हैं और कहें इय्याका नाबुदु, बड़ी खूबसूरत लय में मैंने तजवीद भी सीख ली है, अब देखो मैं कितनी अच्छी तिलावत करती हूँ, बस खूबसूरत खूबसूरत आवाज कर करके पढ़ लेना, इय्याका नाबुदु का हक नहीं अदा करता जब तक कि हम वाकई इबादत को समझे नहीं। और हम ये नहीं कहें कि इय्याका लफ्ज इतना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रहे नाबुदु का भी हो सकता था, हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं साथ इन इन लोगों की भी कर लेते हैं, साथ जो लोग भी कहते हैं उनको भी राजी तो हमने करना है ना, ऐसा नहीं है। इय्याका को समझें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे, तो इसलिए इस चीज को समझते हुए अल्लाह की इबादत करनी है, और इस चीज को समझते हुए ये समझना है कि इसके बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद अब ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह की तो नहीं मानूंगी बाकी सबकी मानूंगी, ये नहीं हो सकता। जो इस लफ्ज को समझ जाए वो समझ ले कि जहां कहीं टकराव होगा, एक तरफ अल्लाह की बात है और एक तरफ किसी और की बात है, तो मैं अल्लाह की बात मानूंगी, दूसरे की बात छोड़ दूंगी, चाहे वो मेरी दोस्त है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई भी है। खुशी है या गम है, अल्लाह मैं तेरी गुलामी करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुलाम सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम का नहीं होता, और हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी कब करते हैं, जब रमजान आ जाता है, क्या ख्याल है ना, जब रमजान आता है फिर हम अल्लाह की गुलामी करते हैं, जब रमजान खत्म हो जाता है तो फिर आप गुलामी को छोड़ो, आप क्या, तब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्या आप अल्लाह के गुलाम सिर्फ रमजान के लिए, हम तो सारा साल हर दिन कहते हैं इय्याका नाबुदु, हम हर दिन कहते हैं और कितनी दफा कहते हैं, और गुलामी सिर्फ रमजान में, ये कैसा गुलाम है जो रमजान के रमजान आता है और उसके बाद चला जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे, क्योंकि फिर पूरा कुरान जो है ना, ये इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन की आगे तफसीर है कि कैसे इबादत करनी है, कैसे अल्लाह को राजी करने वाले काम करने, हम इबादत करते, ये पूरा कुरान ही आपको सिखाएगा अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है, अल्लाह का तारुफ है। फिर उसके बाद वह इय्याका नस्ताईन, अब जब मैं अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ ना अल्लाह, मैं नहीं कर सकती अल्लाह, मेरे अंदर खुद के अंदर ताकत नहीं है, क्यों, इसलिए कि शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, शैतान इंसान को बरगलाता है। जब मैंने आपको शुरू में तावुस का माना बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि शैतान किस तरह से हमले करता है, खास तौर पे इंसान नेकी के रास्ते पर जाने लगे फिर तो बहुत ही, अब जब इंसान ने कह दिया इय्याका नाबुदु तो शैतान आराम से बैठेगा क्या, नहीं, जब वो हमले करेगा अब हमें कौन बचा सकता है, अल्लाह अब हमें तेरी मदद चाहिए, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं क्योंकि सिर्फ तू ही मदद कर सकता है। तो अल्लाह के हुक्मों पे चलना, अल्लाह की इबादत करना, इसमें नफ्स भी हायल होगा, इसमें माहौल भी आपको ऐसा होगा कि जिसमें आपको जाहिर है पीछे खींचने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, इसमें शैतान भी बहकाएगा, तो अल्लाह से मदद मांग ले। अल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तेरे हुक्म मानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कभी मेरे घर वाले मना करते हैं, कभी लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, कभी फलां खड़ा हो जाता है और कभी फलां, अल्लाह तू मेरी मदद करना, हम तेरी मदद चाहते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। फिर देखें इसमें हम का माना आया, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं सिखा दिया मैं मांगती हूं मदद, इसलिए कि अल्लाह को पता है कि इंसान अकेला जो है ना इस रास्ते पर चलेगा तो अकेला कोई चल ही नहीं पाता, उसके साथ जरूर ऐसे लोग होने चाहिए जो उसकी सपोर्ट बने, जब मोमिन एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं ना, जुड़ के रहते हैं, तो एक दूसरे की मददगार बन जाते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बन जाते हैं। और उस सपोर्ट के नतीजे में क्या होता है, इस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है, इबादत आसान हो जाएगी, अल्लाह के हुक्मों को मानना आसान हो जाएगा। आप देखिए ना, आपकी अगर ऐसी दोस्तें हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचती हैं, आपको डिस्करेज करती हैं, तो आप 2 दिन सुनते हैं, 4 दिन सुनते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ वाकई ये सही तो कह रही है, फिर आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। चौथे दिन आप भी ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथी ऐसे हैं जो इनकरेज करने वाले हैं, आपको ऐसा माहौल मिला हुआ है, तो आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। आप पीछे होने भी लगते हैं तो वो कहते हैं क्यों स्लो हो रही हो, याद नहीं हमने ये पढ़ा था, वो आपको वो बातें याद कराएंगे, फिर आपका हौसला बुलंद हो जाता है, फिर आप चलने लगते हैं। तो इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है। अल्लाह हम सब तेरे से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत अच्छी तरीके से करें इस पे तेरी मदद मांगते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह की मदद के बगैर इंसान नहीं चल सकता, इसलिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह वो है जो इस बात से खुश होता है कि इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगे। आप देखें इंसानों से आप किसी से मदद मांगेंगे, इंसानों को कोई बात कहें तो वो नाराज होते हैं, हम फिर मांगने आ गई, फिर मांगने आ गई, इसका यही काम है हमेशा मांगने के लिए खड़ी जाती। अल्लाह ताला ऐसा है जो कभी मांगने से, बंदे के मांगने से नाराज नहीं होता, तो खुश होता है। वो नाराज किस बात से होता है, अगर बंदा नहीं मांगता, नहीं मांगता उसे। तो अब हम क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं, इताअत की मदद मांग रहे हैं कि हम ये सारे नेकी के काम हम कर लें, अल्लाह तेरी अच्छी इबादत हम कर लें। हम मदद मांगते हैं, छोटे बड़े सब कामों में तेरे से मदद मांगते हैं। तो अब हम किससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, देखें पहले इनडायरेक्ट बात हो रही थी ना, पहले हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, फिर हमने डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात शुरू कर दी। इसका मतलब अल्लाह से बात करने में कोई रुकावट नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना किसी से मदद मांगनी, अल्लाह से मदद मांगनी है तो किसी का वास्ता पकड़ो, अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तुम तो बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी कहां सुनेगा, ओ दीवानों देखो तो सही तुम हिया का नस्ताइन में क्या कहते हो, देखो तो सही तुम तो खुद कहते हो, हर दिन हर रकत में कहते हो हम तेरे से मदद मांगते हैं। लेकर आओ ना उस वक्त कोई वसीला अंदर, लेकर आओ किसी को अंदर डालो, फिर मांगना अल्लाह से। अल्लाह ने तो तुम्हें शुरू सूरा पहले कुरान में दर्स ही सबसे पहला ये दे दिया कि जब कुछ चाहिए होगा ना, मदद चाहिए होगी, तो मेरे बंदे अल्लाह की तरफ आ जाना, अल्लाह से कहना अल्लाह मुझे मदद चाहिए, मांगना मुझसे। क्या अल्लाह ने यहां पे कहा मदद चाहिए हुई तो फलां जगह पे पहले जाना, उससे कहना, वो फिर मुझसे कहेगा तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वो कोई है, वलीउल्लाह है, कोई फलां है, कोई फलां, कोई भी है। क्या अल्लाह ने ये कहा, फिर हम क्यों ये कहते हैं मेरी तो सुनी नहीं जाती, आप ही दुआ करें। ठीक है, किसी को आप कह सकते हैं कि आप दुआ करें मेरे लिए, मगर ये सोचना कि मेरी नहीं सुनी जाती, फलां करेगा तो फिर होगी, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक तो वो अजीम रब है, अल्लाह सुभाना तआला ने तो शैतान की भी दुआ सुन ली, जिसने कहा कि मुझे कयामत तक मोहलत दे दे अल्लाह कि मैं इनको बहकाऊं, तो अल्लाह ने कहा हाँ ठीक है जा। तो आज क्या हम उससे भी गए गुजरे होंगे कि हम अल्लाह से इतने मायूस हो चुके हैं कि हम अल्लाह से मांगते ही नहीं, और कहते दूसरे हमारे लिए मांग ली, हमने नहीं मांगनी। देखो तो सही आपको अल्लाह ताला क्या सिखा रहा है कि कहो अल्लाह हमें मदद चाहिए, और डायरेक्ट अल्लाह से कहो, बात करो अल्लाह से, नहीं हमें नहीं आता मांगना। भाई जिस जुबान में भी आता है मांगो, जैसे भी कहना आता है मांगो, दिल में कहो, ऊंची आवाज में कहो, हल्की आवाज में कहो, कहो टूटे फूटे अल्फाज में कहो, लेकिन जिसके साथ आपको कोई ताल्लुक होता है ना, उससे ही आप बात करते हैं ना, जिसे आप शर्माते हैं, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल नहीं होते, फिर आप कहते हैं कोई और ही जाके उससे बात कर ले, मैं नहीं डायरेक्ट कर सकती। तो जब आपने अल्लाह ताला की जात को समझ लिया और उससे मोहब्बत हो गई, तो फिर जब इबादत हमने कह दिया ना या का नाबुदू, तो हमने बता दिया कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत। उसके बाद जिससे मोहब्बत होती है, क्या दिल नहीं करता उससे बात करने का, बताएं नहीं दिल करता? क्या दिल करता है ना कि इससे तो बातें ऐसी हों कि वक्त रुक जाए, बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसा होता है ना, जिनसे हमें प्यार होता है पूरी पूरी रात भी उनसे बातें करते रहते हैं, तो वो फजर हो जाती है, वक्त का ही नहीं पता चलता, पूरी रात गुजर गई, नींद भी हमें नहीं आती, फिर उस वक्त हम उनके साथ बैठ के बस गपशप ही करते रहते हैं, है ना? ऐसे हमारे कई प्यारे रिश्ते होते हैं ना। तो अल्लाह ताला से जिसको इंतहा दर्जे की मोहब्बत है, कैसे हो सकता है वो अल्लाह से ही बात ना करना चाहे, और बस लोगों को पकड़े, कभी उस कब्र पे चला गया, कभी उस पीर के चला गया, कभी उसके चला गया, और उन जगहों पे जाके कह रहे हैं जी आप मांगे हमारे लिए, हम तो नहीं अपने लिए मांग सकते। तो फिर ये क्यों कहते हो जब नमाज में खड़े होते या कनस्ताई, इसके लिए भी ढूंढ लाओ ना कोई बाबों को, हाँ वो ही आपके लिए कह दें। तो अल्लाह ने सिखा दिया जब मांगो मुझसे मांगो, डायरेक्ट मांगो, किसी की भी नहीं जरूरत है बीच में, क्योंकि नमाज में हर दफा आप ये कहते हो, कुरान खोलते हो तो आप ये कहते हो या कनस्ताई, आपने डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन बना लिया है और अल्लाह ने आपको सिखा दिया है, किसी और की जरूरत नहीं है मेरी तरफ आने के लिए, मुझसे मांगने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पे हम कहते हैं या का, सिर्फ तुझसे अल्लाह हम मदद चाहते हैं, डायरेक्ट हमने अल्लाह से बात की है। देख ले हम कहते हैं ना लोगों को बड़े पहुंचे हुए हैं, सब पहुंचे हुए हैं, जो भी अल्लाह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है वो सब पहुंच जाते हैं अल्लाह तक, अल्लाह ताला तक लाइन लगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह से बात कर सकते हैं। एक काफिर भी अल्लाह को पुकारता है तो आप कुरान में पढ़ेंगे अल्लाह उसकी भी सुनता है। तो इय्याका नस्ताईन, अल्लाह इताअत के सारे कामों में और अपने भी तमाम कामों में मुझे तेरी मदद चाहिए, ठीक है? और यहां से हमें समझ आ गई कि हमने मांगना कैसे है। अब यहां से हमें एक और बात भी पता चलती है कि यहां पे भी अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि बंदा मांगे, अल्लाह ताला को ये अच्छा लगता है कि बंदा मांगे। एक हदीसे कुदसी में आता है, हदीसे कुदसी किस हदीस को कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, वो कुरान में नहीं है अल्फाज, लेकिन वो अल्लाह के बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो तुम सब फकीर हो सिवाय उसके जिसको मैं गनी कर दूं, तो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। क्या फरमाया, तुम मुझसे मांगो, ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुमसे हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो तुम सब गुनाहगार हो सिवाय जिसको मैं बचा लूं, तो तुम में से जो ये जाने कि मैं माफ करने पर कुदरत रखता हूं और उसने मुझसे माफी चाही, माफी मांगी, मैं उसको माफ कर देता हूं और मुझे परवाह नहीं होती। अगर तुम में से तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर, यानी सब के सब इसमें आ गए ना, मेरे बंदों में सबसे मुत्तकी आदमी की दिल की तरह हो जाए, तो मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। और अगर तुम में से पहला और आखिरी आदमी जिंदा मुर्दा खुश तर सब के सब सबसे बदबख्त आदमी के दिल की तरह हो जाए, तब भी मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होती। तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी जिंदा मुर्दा खुश्क तर एक मैदान में जमा हो जाए, तुम्हें से हर इंसान अपनी आखिरी दर्जे की तमन्ना मांगे और मैं तुम्हें से हर मांगने वाले का सवाल पूरा कर दूं, तो भी मेरी बादशाहत में कमी नहीं होगी, अल्लाह के हाँ जरा सी भी कमी नहीं होती। तो अल्लाह को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बकील नहीं है कि जैसे होता है ना, हम दुनिया में किसे मांगे उसका दिल ही इतना छोटा होता है, कहता है हाय क्यों दूं, पहले भी दिया था, अब पहले का हिसाब दो फिर और दूंगा। बुखल करते हैं ना, इंसान होते हैं बुखल करते हैं। अल्लाह सखी है, वो गनी है, ठीक है? तो अल्लाह को देने में कोई मसला नहीं। दूसरा क्या चीज होती है, कब नहीं इंसान देता, वो कहता है हाय मेरे पास ना कमी हो जाए, कहते मेरे पास मेरे इतने पैसे हैं, इसको दे दिए तो मेरे पास कम हो जाए, अल्लाह के तो खजाने लामहदूद है, वो क्यों ना दे, उसको देने में क्या डर है, उसके तो कोई कमी नहीं आनी, लिहाजा उसको ये भी खौफ नहीं कि मैंने इनको दे दिया तो आए मेरे पास काम हो जाएगा, तो वो क्यों ना देगा, उसके तो खजाने भरे पड़े हैं। फिर तीसरी क्या बात होती है कि इंसान कब नहीं देता, जब वो कहता है कि अगर दे दिया तो फलां मेरे से पूछेगा क्यों दे दिया, तो वो फलां को मैं क्या जवाब दूंगी, फलां को क्या जवाब दूंगी, हस्बैंड को क्या कहूंगी कि क्यों यहाँ पे इतने दिए। अल्लाह ताला को तो कोई किसी से मशवरे करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो जिसको चाहे जितना भी इनायत करे, तो फिर क्यों ना हम उससे मांगे। तो बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या औरत हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, सब अल्लाह से ही मांगे। और अल्लाह हमसे ये एतराफ कराता है इस आयत के अंदर, बहुत बड़ा एतराफ। क्या खुद सोचें, जब हमने अल्लाह से मदद मांगी, मदद कौन मांगता है? जो अपने आप को कमजोर फील करता है, जिसको लगता है कि मैं खुद नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया कि तुम ये मान जाओ ना कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मदद चाहिए। देखिए ना, मदद किसको चाहिए थे, खुद सोचें, दुनिया में भी किसको मदद चाहिए होती है? जो जयीफ है, कमजोर है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता। अक्सर देखते हैं बच्चों को मदद चाहिए होती है, बूढ़ों को मदद चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान ये मान जाए, तो इंसान कुरान खोलते ही अपनी आजजी का इतराफ करता है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेबस हूं, हे अल्लाह मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है, मुझे तेरी मदद चाहिए। किस में मदद चाहिए? हर चीज में ही मदद चाहिए, हर चीज में। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं कहा गया, हर चीज में मदद चाहिए अल्लाह। जाहिर है इताअत में, बंदगी में तो चाहिए, नेकी के कामों में। अल्लाह मुझे तो हर चीज में ही चाहिए, अपनी जिंदगी गुजारने में चाहिए, अपने उठने बैठने में चाहिए, अपनी जिंदगी के हर काम में चाहिए। ये इंसान डायरेक्ट अल्लाह ताला से कह रहा है। सोचें, अल्लाह ने एक जर्रे को, एक इंसान एक जर्रा, जर्रे से भी कम चीज होगी, आप सोचें जमीन पे मैं और आप क्या है, क्या है इस जमीन पे, एक जर्रे से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर पूरी जमीन को देखा जाए, करोड़ों अरबों आदमियों इंसानों के अंदर हम क्या है, एक छोटी सी इंसान। उस एक एक इंसान को अल्लाह ने कितनी अहमियत दी है, कितना अल्लाह ताला ने इसको ऑनर दिया है कि ये डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सके। आप देखें दुनिया में कोई बड़ी जगह पे चला जाता है, वो कहता नहीं मेरे तक पहुंचने के लिए मैं नहीं किसी से बात करता, मेरे पास नहीं है टाइम, चलो जाओ मेरे सेक्रेटरी से बात करो, चलो जाओ मेरे फलां से बात करो, वो तो बस बड़े बड़े लोगों से बात करता है। यहाँ पे हर एक, मैंने आपको बता दिया ना, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, अनपढ़, बेपढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, सबको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। जो अल्लाह से बात करना चाहे, जब करना चाहे करें, ना दिन और रात की कोई कैद है, ना उम्र की कोई कैद है, ना पढ़ाई की कोई कैद है, किसी चीज की भी कैद नहीं। आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह को पुकार सकते हैं, ना ये कोई कैद है कि नेक ही है तो वही मेरे पास आएंगे, जो बहुत गुनाहगार है ना वो दूर रहे मेरे पास से, खबरदार जो मेरे करीब आए, खबरदार जो मुझसे बात की, उनको भी नहीं, सब के लिए ये दरवाजे खुले हैं। या कनस्ताइन के, फिर भी ना हम मांगे उससे मदद, और फिर भी हम अपने मसलों के लिए हर तरफ भागे, लेकिन एक अल्लाह को ही ना पुकारे, कितनी बदनसीबी है ना। जहानों के मालिक ने, रब्बुल आलमीन जो पूरे जहानों के सिस्टम चला रहा है, एक चूंटी से लेके, एक वायरस से लेके, एक माइक्रोस्कोपिक कीड़े से लेकर वेल मछलियों और सूरज और चांद और सितारों और बड़े बड़े ह्यूज फरिश्तों तक के निजाम जो रब चला रहा है, उससे हम अपनी छोटी सी हाजत कहने में भी देर करते हैं, या ख्याल ही नहीं आता, या समझ ही नहीं है, या शर्माते हैं, क्या बात है कि उसी के पास नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ा कलमा है, या का नाबुद या का नस्ताइन, सारी तौहीद इसके अंदर आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह का खुलासा इसमें आ गया। जब आपने कह दिया या कनाबुदु व या कनस्ताई, अपना तो वर्द ही बना लें, या कनाबुदु व या कनस्ताई, अल्लाह को वास्ते देते रहें कि अल्लाह तेरी तो इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी करते हैं। एक ऐसे ही बात बताती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक हमारे पास एक बिल्ली है, तो उस बिल्ली को हमने बहुत, जब छोटी थी, बहुत छोटा सा किटन थी, तो तब हमने उसको लिया था, यानी कुछ चंद हफ्तों का। अच्छा, अब उससे एक मैंने बात सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब तो वो बिल्ली बड़ी हो गई है, लेकिन मैं उसको प्यार क्यों करती हूँ? जब भी मैं उसको प्यार करने लगती हूँ तो मेरे जहन में एक बात होती है कि इसका तो कोई भी नहीं है, इसकी तो और बिल्लियाँ साथी भी नहीं है, इसने तो बहुत ही छोटे सी किटन लिया था, तो इसने तो अपनी माँ को भी नहीं देखा ना और किसी को देखा, ये सिर्फ हमारे घर के अंदर ही रहती, इसने सिर्फ हमें देखा, समझ लें कि हम ही जैसे उसकी फैमिली। तो उस इस बात के ऊपर मुझे उस पर इतना प्यार आता है कि इसका तो और कोई है ही नहीं, इसकी तो सिर्फ हम ही हैं, तो हम ही ना इसको प्यार करेंगे, हम ही इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर। इसी चीज को आप रख के सोचें, जब इंसान कहता है ना इया का नाबुदू, तो वो बता रहा है अल्लाह ताला को, अल्लाह तेरे सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और मेरा तो कोई खुदा नहीं है, मैं किधर जाऊं फिर, और अल्लाह मेरे लिए तो मदद करने के लिए और कोई नहीं, अल्लाह मैं तो सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं, मैं किसके पास जाऊं, किसके दर पे जाऊं, कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी। जब आप इस तरह कहते हैं ना और वाकई दिल से कह रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह को भी पता है कि वाकई मेरे इस बंदे के पास कोई और दर नहीं है जहां ये जाए। जब ही तो वो एक हदीस में आता है ना कि फिर अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे को पता है ना कि इसका रब एक है जो इसको माफ करता है, तो ये मेरे पास बार बार चल के आ जाता है, तो मैंने इसको माफ किया। ये इससे आप ये सोचें कि जब आपने इया का कह दिया ना तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मत फिर जाओ इधर उधर सहारे ढूंढो, मत फिर कहीं और माथे टेको, मत किसी और के आगे हाथ उठाओ। हाँ आप किसी से हेल्प के लिए कह सकते हैं, मसलन आपने बच्चे को कहा मुझे पानी दे दो, ये भी एक हेल्प ही मांगना है, लेकिन जब आपने किसी को कहा हेल्प के लिए या किसी ने आपकी हेल्प की, तो वो भी किसके इज्जत से की? अगर वो बच्चा उठा, वो बच्चा चला, वो पानी लेकर आया, वो पानी किसने दिया, वो बच्चे को चलाया किसने, उसको हिम्मत किसने दी, उसको ये तौफीक किसने दी कि वो उठ जाए, अल्लाह ने दी है ना। तो पीछे तो सारी चीजों के अल्लाह ही है, जहां से भी हमें कहीं से भी हेल्प मिलती है वो भी अल्लाह ताला ने किसी के दिल में डाला होता है। तो इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे लिए बड़ा प्यारा कलमा होना चाहिए, या कना बुदुआ या कनस्ता, जब हम कहें तो इसमें इतना प्यार होना चाहिए कि अल्लाह कहाँ जाए फिर, और या कना बुदुआ या कनस्ता, किधर जाऊं फिर मैं, और मेरा तेरे सिवा कोई है ही नहीं, सिर्फ तू ही तो है जिसकी मैं इबादत कर, सिर्फ तू ही तो है जिससे मैं मदद मांगता, कहाँ जाऊं और, तू ही बता, तूने ही तो ये सिखाया, तेरे पास ना हो तो किधर जाऊं। तो फिर अल्लाह को भी प्यार आएगा कि मेरे इस बंदे के पास वाकई और कोई नहीं, इसका तो मैं ही सहारा हूं ना, तो वो क्यों ना मदद करेगा। अगर सिंसेरिटी चाहिए, इखलास चाहिए इस बात को कहने के लिए, वो दिल चाहिए जिसमें वाकई सिर्फ फिर अल्लाह ही हो और ना हो, फिर बात समझ आ गई।